समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है।
जी हाँ, सुख दुख धूप छाँव, इसी का नाम तो जीवन है। राजा हो या रंक, सभी को ये कर्म भोगने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को ज्यादा तो किसी को कम। इसीलिए तो कहते हैं कि नेकी का हाथ थामकर जिंदगी की सीढ़ी चढ़ेंगे तो ईश्वर का हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। वेल, हफ्ते की एक और नई सुबह, नया दिन और ढेर सारी नई चुनौतियां, और साथ में समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे, जिसे प्रस्तुत करने के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
वेल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। लिसनर्स, मॉर्निंग्स हैव अ स्पेशल चार्म ऑलवेज। इट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे एंड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस इन द मॉर्निंग लाइट। एंड लिसनर्स, हियर वी आर कैप्चरिंग द अल्योर ऑफ अ न्यू डे and with our program, particularly this is Meesha Gun Chopra with Ravi Kapoor. Let's give a brief description to our listeners, right? First,
bilkul,
we'll give you the headlines first, listeners, the national and international news. We'll also provide you metro city updates and historical information related to today. Today is 30th of August 2025, so there is a lot to look forward to for our listeners, right?
Bilkul, sahi keh rahi hain aap, Shagun.
So stay tuned with us, listeners, till the very end of the program. Let's begin with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने की एक दशक की व्यापक कार्य योजना तय कर ली है। दोनों नेताओं ने कल टोक्यो में शिखर वार्ता के बाद ये घोषणा की। सोशल मीडिया पोस्ट में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले दशक की कार्ययोजना में निवेश, नवाचार, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क और अत्याधुनिक भागीदारी के क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अगले 10 वर्ष में जापान से भारत में 100 खरब येन निवेश का लक्ष्य रखा है। दोनों देश लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप उद्यमों पर भी विशेष ध्यान देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, पर्यावरण और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जापान की कंपनियों से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत में विश्व के लिए विनिर्माण का आग्रह किया।
के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्ट्रेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।
the Prime Minister announced an action plan for human resource exchange and cooperation between two countries, setting a target of facilitating the two-way movement of more than 5 lakh people from different sectors between India and Japan over the next 5 years. He affirmed India and Japan's commitment to a free, open, peaceful, prosperous and rules-based Indo-Pacific while announcing that both countries have decided to further strengthen mutual cooperation in defense industry and innovation.
भारत और जापान एक फ्री ओपन पीसफुल प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा
Mr. Modi also welcomed the agreement between the Indian Space Research Organization ISRO and the Japan Aerospace Exploration Agency for the Chandrayaan 5 mission under the Lunar Polar Exploration Program. Speaking on the occasion, Japanese Prime Minister praised India's transformative global impact and called for greater integration of skilled Indian talent into Japan's economy. Later briefing media on PM Modi's Japan visit, Foreign Secretary Vikram Misri informed that both leaders exchanged the joint vision for the next decade, the 10-year strategic roadmap in economic and functional cooperation between the two sides. Prime Minister Modi reached Tokyo yesterday on a two-day visit to Japan. After concluding his visit to Japan, Prime Minister Modi will travel to China to attend the Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Tianjin.
भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव पेश कर दिया है इससे पहले भारत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ और गुजरात सरकार के प्रतिनिधित्व में कल लंदन में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष डॉ डोनाल्ड रुकारे को आधिकारिक बोली प्रस्तुत की गई इस बोली में अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी आयोजन के लिए मेजबान शहर के रूप में दिया गया है गुजरात के खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव सुचारू और समावेशी खेल आयोजन की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर बोली प्रस्तुत करना भारत की खेल विरासत को उजागर करने और देश के युवाओं के भविष्य के लिए इसके दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि भारत के खेल वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन सिद्धांत पर आधारित होंगे उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव सूक्ति खेलों के लिए भारत आने वाले सभी हितधारकों के लिए योजना का मार्गदर्शन करेगी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि यह बोली पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल भारत की खेल क्षमताओं के साथ साथ मैत्री सम्मान और समावेशी मूल्यों को भी प्रदर्शित करेंगे ये विचार हमारी खेल संस्कृति को परिभाषित करते हैं ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरई स्वामी ने खेल संस्कृति के महत्व के बारे में कहा कि सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण और युवा प्रतिभाओं को भविष्य का चैंपियन बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्रों सहित निवेश को प्राथमिकता दे रही है
The UN Security Council has decided to end the peacekeeping operations in Lebanon, in which nearly 1,000 Indian troops are deployed. The council voted yesterday to shut down in 2 years the UN interim force in Lebanon, UNIFIL, that has been struggling to keep the peace in southern Lebanon, where Israel confronts the Hezbollah and the weak Lebanese military is caught in the middle. The 47-year-old UNIFIL's mandate that expires this weekend was extended for a final time till the end of 2026, with another year allowed for the safe and orderly wind down of the operations. There are currently 10,800 peacekeepers in UNIFIL, including 903 from India. The resolution for extending the mandate was crafted carefully by France to avoid a US veto that would have reflected Israel's opposition to the UNIFIL. UNIFIL was created by the Council in 1978 with a mandate to monitor the withdrawal of Israeli forces from southern Lebanon and to help the Lebanese government re-establish its authority in the area. Two Indians, Brigadier Ganesan Atmanathan and Major General Lalit Mohan Tiwari, commanded the force in the early 2000s.
भूटान की राजधानी थिम्फू में भारत ने नेपाल को 5-0 से हराकर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब पक्का कर लिया है। इस जीत से भारत 5 मैचों में 15 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारत का कल बांग्लादेश से कल अंतिम मैच होगा।
We have another sports update, Ravi. In badminton, star men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have stormed into the semi-final of World Championships in Paris, assuring India of a medal at the tournament. The world number 9 thrashed second seeds Aaron Shreya and So Pui Yik of Malaysia 21-12-21-19 in the quarterfinals. Earlier, Satvik and Chirag had won a bronze at the 2022 World Championships in Tokyo. Their medal also ensured that India's streak of winning a medal at every World Championships since 2011 remained intact. The Indian duo will now take on world number 11 Li Yu and Bo Yang Chen of China in the semi-final today.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
यस रवि, फर्स्ट वी आर हेडेड टू चेन्नई। The Indian National Centre for Ocean Information Services, Ministry of Earth Sciences, in collaboration with the National Disaster Management Authority, organised a conclave on marine multi-hazard services for the Indian coastline in Chennai yesterday. In his inaugural speech, member of the NDMA, Lieutenant General Syed Atta Hasnain, said that a new technology of common alerting system through cell broadcast would be launched on trial basis from September 1 to help fishermen community be safe from any cyclones. He informed that the cell broadcast application would have advanced technology where even if the mobile was in silent mode, it will generate a sound to alert the fishermen. How wonderful. And those having the app about any natural calamities or any cyclones, well, our phone sometimes is on silent mode. So this will generate a sound even on silent mode to alert the fishermen. Wonderful technology. Well, he cited the efficient handling of the cyclone Biparjoy, which hit Gujarat coast in 2023, where multi-stakeholders, including State Disaster Management Authority, worked in tandem by evacuating those in low-level areas and by sending more than 32 million alert messages and helped prevent loss of lives, therefore.
सही कहा आपने बिल्कुल शगुन। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसके सकारात्मक जो प्रभाव हैं वो हमें भी दिखाई पड़ते चले जा रहे हैं, और
yes,
ये हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है।
जी, राइटली सेड रवि। Also, I have another update from Chennai. National Institute of Open Schooling signed an MOU with Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University to create skilled manpower in the field of livestock and poultry and allied sectors. Addressing the media in Chennai, the chairman of NIOS, Professor Akhilesh Mishra, said that the objective of this agreement is to provide vocational training through certificate and diploma courses. The MOU will be in effect for a period of 5 years. According to the agreement, Tanuas study centres will initially offer certificate courses in poultry farming and vermicomposting, as well as 2 diploma courses in food and beverage operations and baking, and also confectionery product preparation. Let's head now to Bengaluru. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan visited farmers' fields and interacted with them. In Mysuru, he inspected the Nandragud Rasabale, a special variety of banana in this part known for its low sugar content. Sri Ram, the farmer, interacted with the minister and showed coconut, ginger and papaya crops grown in his 4-acre land. Later in the day, Shivraj Singh Chauhan visited ICAR, National Bureau of Agricultural Insect Resources, in Bengaluru. He explored the National Insect Museum and Live Insect Repository. Now, we are heading, Ravi, to Hyderabad. All arrangements are in place for the monsoon session of the Telangana State Assembly. Both Legislature Council and Legislature Assembly will meet later this morning. The government is expected to table the PC Ghosh Commission report on the Kaleswaram project on the first day. Well, I have one more update. In Telangana, the State Disaster Management Authorities are continuing rescue operations in the rain-ravaged areas of Kamareddy and Medak districts, with several colonies and villages still reeling under flood water. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Over to you, Ravi, now for Delhi, Mumbai, Kolkata.
बहुत बहुत धन्यवाद शगुन। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कल अपने आवास स्थित विधायक कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित की। श्री गुप्ता ने बताया कि इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक समस्याओं का समाधान समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान को अब 2 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय दिल्ली वासियों की ऊर्जा और अटूट लगन को देखते हुए लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की जागरूकता और सहयोग ने इस जन आंदोलन को नई ताकत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल दिल्ली सचिवालय में दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के फिनिशर मेडल का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर धावक का संकल्प और मेहनत समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि ये हाफ मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि ये स्वस्थ, सशक्त और अनुशासित समाज के निर्माण की दिशा में एक बड़ा अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार ये भी प्रयास करेगी कि मैराथन में इस बार महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक हो। दिल्ली हाफ मैराथन 12 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी जिसमें दिल्ली के साथ साथ पूरे देश और विश्वभर से हजारों लोग हिस्सा लेंगे। दिल्ली नगर निगम ने कल एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से नागरिक अब शहर भर में चल रही मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की वास्तविक समय में गतिविधियों और मार्गों को देख सकेंगे। वर्तमान में ये मशीनें प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर कार्य करती हैं। निगम ने बताया कि इस पोर्टल की मदद से जनता ये भी देख सकेगी कि सफाई मशीनें कब और कहां काम कर रही हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित होगी। निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने रेखांकित किया कि यह पोर्टल बेहतर नगरीय प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए नागरिक न केवल जागरूक होंगे बल्कि सशक्त भी बनेंगे। इन मशीनों की लाइव ट्रैकिंग लिंक निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र की ओर।
राइट।
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सेवा विस्तार के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जिसे अब मंजूरी मिल गई है। राजेश कुमार 1 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक पद पर बने रहेंगे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार ने 30 जून 2025 को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया था। मूल कार्यक्रम के अनुसार उन्हें अगस्त के अंत में सेवानिवृत्त होना था, हालांकि सेवा विस्तार की मंजूरी के साथ अब वे 30 नवंबर तक पद पर बने रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कुल बूथों की संख्या 14,000 की बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये संख्या लगभग 95,000 होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कल अपने कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर बूथों की संख्या बढ़ाने सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। भाजपा, माकपा और कई दलों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बूथ पुनर्व्यवस्था के संबंध में सीईओ कार्यालय को रिपोर्ट भेजने के तरीके के खिलाफ आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल होने की उम्मीद है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश की संभावना है। वैसे शगुन, आज सुबह जब हम ऑफिस आ रहे थे तब तो बारिश नहीं हुई थी, बहुत ही अच्छा मौसम था
थैंकफुली।
आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोलकाता की अगर बात करें तो वहां भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Now if I talk about Chennai, it is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is again expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between minimum of 22 degrees and maximum of 30 degrees Celsius there as well.
और शगुन, इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि आज स्मॉल इंडस्ट्री डे यानी कि लघु उद्योग दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के समग्र आर्थिक विकास में कार्यनीति महत्व को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। इसी के अनुसार लघु उद्योगों के लिए सरकार से नीति समर्थन की प्रवृत्ति लघु उद्यम वर्ग के विकास हेतु सहायक और अनुकूल रही है।
Well, yes, Small Industry Day serves as a reminder of how small-scale industries, they contribute to the Indian economy, the promotion of small businesses to their growth and development, and encouragement of entrepreneurship and employment, and the preservation of India's cultural heritage. Well, this is an annual occasion, and it has been celebrated, Ravi, let's tell our listeners, since the year 2001. So by focusing on the objectives which Ravi was telling us, the National Small Industry Day reinforces the vital role of small industries in fostering economic resilience and inclusive growth.
जी, और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। जी शगुन
जी, फर्स्ट विल बिगिन विद द ईयर 1947, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द चेयर मेट इन न्यू दिल्ली टू कंसीडर द सप्लीमेंट्री रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। वेल, इन 1963 अ हॉटलाइन वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वॉशिंगटन एंड मॉस्को, एंड जॉन एफ कैनेडी बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू हैव अ डायरेक्ट फोन लाइन टू द क्रेमलिन इन मॉस्को। In 1983, Indian national satellite INSAT-1B, it was launched. This was also a multi-purpose communication and meteorology satellite which served for more than its design life of 7 years. It was launched by US Space Shuttle.
जी, 1984 में आज के दिन अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली बार उड़ान भरी थी। 1991 में आज के दिन अजरबैजान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी। और 1999 में आज ही के दिन पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह संपन्न हुआ। पूर्वी तिमोर के निवासियों ने इंडोनेशिया से आजादी के लिए भारी मतदान किया और संयुक्त राष्ट्र ने 4 सितंबर को परिणाम की घोषणा की।
जी।
और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में बात करने का। तो शगुन, इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का, जिनका जन्म हुआ 23 अप्रैल 1889 सारण बिहार में और निधन हुआ 30 अगस्त 1976 को। गंगा प्रसाद अच्छे कथाकार, कहानीकार के अलावा एक बेहतर अभिनेता भी थे। कई नाटकों में उन्होंने सशक्त अभिनय किया। उस दौरान श्रीवास्तव जी एकांकी के सशक्त अभिनेता थे। सरलता और अभिनय के गुण से परिपक्व एकांकी लिखने में माहिर गंगा बाबू का नाम हिन्दी के शुरूआती एकांकीकार के रूप में जाना जाता है। गंगा बाबू को साहित्य वारिधि व साहित्य महारथी जैसे अलंकरण से विभूषित किया गया। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की मुख्य रचनाओं में शामिल हैं 1913 की लंबी दाढ़ी और 1919 की नोक झोंक।
Well, listeners, today we are also remembering Taru Lata Datta. Well, also she has been popularly known since as Toru Datta, Bengali poet and translator also, and she wrote in English and French. Well, some of her works, let me name them. Her volumes of poetry in English, Sita, also a novel in French, Le Journal de Mademoiselle d'Arver. This was in the year 1879. Her poems, well, they explore themes of loneliness, longing also, patriotism as well.
और अब बात करते हैं जयंतियों की, जिसमें सबसे पहला नाम है भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक रहे कन्हई लाल दत्त का, जिनका जन्म हुआ 30 अगस्त 1888 हुगली जिला बंगाल और निधन 10 नवंबर 1908 कोलकाता में। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का पूरी तरह से विरोध किया था। अपनी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करके कन्हैयालाल कोलकाता आ गए और बारिंद्र कुमार के दल में शामिल हो गए। 1908 में मुजफ्फरपुर के अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था। इस हमले में कन्हैयालाल दत्त, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार आदि पकड़े गए। इनके दल का एक युवक नरेन गोस्वामी अंग्रेजों का सरकारी मुखबिर बन गया। क्रांतिकारियों ने इससे बदला लेने का निश्चय कर लिया था और अपना ये कार्य पूर्ण करने के बाद ही कन्हैयालाल पकड़े गए और उन्हें फांसी दी गई थी।
कर चले हम पिता जान तन
साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
Well, we salute the brave heart. Now, moving on. Today, we are also remembering John Andrew Phillips, musician, singer and songwriter. He was the leader of the vocal group, the Mamas and the Papas, and he remained frequently referred to as Papa John Phillips. His name is John Andrew Phillips. I have this song chosen for you listeners specifically. This is California Dreamin'.
आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकारों में से एक रहे भगवती चरण वर्मा के बारे में, जिनका जन्म हुआ 30 अगस्त 1903 उत्तर प्रदेश में और निधन 5 अक्टूबर 1981 को। उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक, महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 में त्रिपदगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुए, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं। और उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। और शगुन, उनके द्वारा लिखी गई कुछ मुख्य रचनाओं में शामिल हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत राम गोसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्रात, मेरी कविताएं, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, वसीयत आदि आदि।
Well, let me talk about Ravi, another musician now. Today, we are also talking about John McNally. Today, it's his birthday. Well, he's a guitarist and as well, he has been performing as a singer. He was member of the Searchers. This was a band which was formed in 1959 and they were a big part of the Mercy sound. This song, the name of the sound they have specifically named in the early 1960s. Also, there is a song that I have chosen for you listeners. This was a live performance by the Searchers, their band. Listen in. Well, today, listeners, we are also remembering Sir J.J. Thomson, the physicist whose study of cathode rays led to his discovery of the electron, a subatomic particle with a negative electric discharge. He was awarded the 1906 Nobel Prize in Physics in recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations in the conduction of electricity by gases.
और कार्यक्रम के अंत में बात उस फिल्मी गीतकार की, जिनका असली नाम तो था शंकर दास केसरीलाल, लेकिन जिन्हें हम सब उनके प्रसिद्ध नाम शैलेंद्र से ज्यादा जानते हैं। आपका जन्म 30 अगस्त 1923 रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ और निधन 14 दिसंबर 1966 मुंबई में। आप हिंदी फिल्मों के एक सुप्रसिद्ध गीतकार थे। होठों पर सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है, मेरा जूता है जापानी, आज फिर जीने की तमन्ना है, जैसे दर्जनों यादगार फिल्मी गीतों के जनक शैलेंद्र ने महान अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के साथ बहुत काम किया। गीतकार शैलेंद्र ने राज कपूर और वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत तीसरी कसम फिल्म का निर्माण भी किया था शगुन, लेकिन बहुत सुंदर और जज्बाती फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई और शैलेंद्र द्वारा लगाया गया पैसा भी डूब गया और इसी के चलते कुछ समय के बाद उनका निधन भी हो गया। वैसे इस फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र साहब से एक रुपया भी नहीं लिया था। और खैर, सुन लेते हैं सबसे पहले तीसरी किस्म फिल्म का शैलेंद्र का लिखा ये फिलोसॉफिकल गीत और उनके लिखे कुछ और प्यारे से गीत।
जी।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
ओ, कांटों से खींच के ले आ चल,
Through sheer talent, Shailendra was able to transcend the traditional barrier of romantic songs and introduce songs that addressed the afflicting Indian society at that time.
चलते चलते आज का विचार कि ईश्वर केवल वहीं पर नहीं होता जहां उसकी प्रार्थना या स्तुति की जाती है, बल्कि ईश्वर वहां भी होता है जहां अपराध किया जाता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगन चोपड़ा को। नमस्कार।